नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने ईरान में तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सुरक्षित स्थान पर रहें और किसी भी आवाजाही से बचें। मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि ईरान के भीतर और सीमा चौकियों तक किसी भी प्रकार की आवाजाही तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय और निर्देश के बाद ही की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सभी बिजली संयंत्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला इमारतों से दूर रहें, घर के अंदर रहें। दूतावास द्वारा किराए पर लिए गए होटलों में ठहरे हुए लोगों को भी यह परामर्श दिया गया है। दूतावास से मोबाइल नंबर 9891081509120102 और 9899321793 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। दूतावास का ईमेल पता cons.tehran@mea.gov.in है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसराइल की सेना ने कहा है कि उन्होंने ईरानी शासन के कई ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इसराइल के अधिकारियों ने कहा कि इसराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ने के कारण इन हमलों का उद्देश्य सैन्य, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे को बाधित करना था। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा नहीं खोला गया तो ईरान पर विनाशकारी हमले किए जाएंगे। पोप लियो 14वें ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने नागरिक बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और युद्ध के बजाय शांति के लिए काम करने का आह्वान किया। पोप ने राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी की निंदा की जिसमें उन्होंने ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य को समझौते को पूरा न करने पर ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की बात कही थी। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए लाए गए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहरीन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर मतदान किया। परिषद के 11 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जबकि रूस और चीन ने इसके विरोध में अपना वीटो अधिकार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और कोलंबिया इस मतदान से दूर है। वीटो शक्ति रखने वाले स्थायी सदस्य रूस और चीन द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सामान्य है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एजेंटों की बैठने की व्यवस्था के संबंध में कोई नया दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। आयोग ने मीडिया द्वारा प्रसारित कुछ संदेशों का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मतदान एजेंटों को मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास किया। असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए गुरुवार को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हरा दिया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ और इसे 20 ओवर से घटाकर 11 ओवर का कर दिया गया। राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज बिहार, झारखंड और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।